जो अपने आप को भगवान के साथ जोड़ रखता है भक्त को, या किसी को व्यक्ति की यही कसौटी नहीं होते हैं योजना के अनुसार अपने इंद्रियों में नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि जो मन किया वो कर दिया। इंद्रियों के साथ जो हमारे भोग के इंद्रिय हैं मुख्य रूप से पांच ज्ञान इंद्रिय और इसके साथ मन छ, छ को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ और भी कर्म इंद्रिय आते हैं, सब मिलाकर दस इंद्रिया और मन के साथ विचार। इन इंद्रियों को वश में करना एक बुद्धिमान भक्त योगी का कर्तव्य है, किंतु अधिकांश लोगों की स्थिति है कि वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे नहीं करते हैं, मजबूरी में तो करते हैं। जो शौक से भगवत सेवा के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करता है तो योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं, और मजबूरी में तो करना ही पड़ता है। गरीबी में, बीमारी अवस्था में तो करना ही पड़ता है। मान लीजिए हम मार्केट से गुजर रहे हैं और एकदम ताजा ताजा जलेबी छम रहा है, जीभ में पानी आ गया, लेकिन पॉकेट में हाथ लगाए तो पैसा नहीं, क्या करेंगे? पैसा नहीं है तो देगा नहीं, तो तुरंत समझा देता है, बुद्धि समझा देती है जीव को, चलो दूसरे को पैसा होगा तो खा लेंगे, कंट्रोल कर लिए ना। तो मजबूरी में कंट्रोल करना होगा। और कभी कभी घर में पकवान बना है विभिन्न प्रकार के मिष्ठान भोजन, लेकिन पेट में दर्द है, रोग है किसी कारणवश, तो खाने की इच्छा ही नहीं होगी, मजबूरी है। और इच्छा भी होगी तो अगर स्वास्थ्य प्रतिकूल है तो नहीं खा सकते, डॉक्टर मना किया है। भले माल पूरा बच्चे ले लेकर टहल रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति जो कि खाते ही उसका हालत गंभीर हो जाएगा। तो मन में है, मथुआ का स्वाद जानता है, लेकिन खा नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। तो हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं लेकिन मजबूरी ये ठीक नहीं है, उनको बुद्धि से कंट्रोल करना है। कभी कभी रोग की अवस्था में या किसी परिवार के अपने पत्नी से भाई से कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो लोग नाराज होकर लोग उपवास कर जाते हैं, नहीं खाते दिन नहीं खाएंगे, आज तुम्हारे यहाँ फिर खाओ नहीं, तो नहीं खाते हैं, बाहर भी नहीं खाते, अंतर कर लेते हैं। तो और बहुत लोग उसको बुद्धि से काफी को हम नहीं खाएंगे, आज उपवास करेंगे भगवान के लिए, ये हमें जो समझ का ध्यान देकर बुद्धि से और प्रत्येक इंद्रियों के भोग के साथ खतरा है, कई तरह की खतरा है। एक मुख्य खतरा है कि हम अपने इंद्रियों को ऐसे छोड़ देंगे तो वो चंचल हो जाती है और वह हर विषय पर जब उसके विषय प्रस्तुत होंगे तो वह चल जाए और इसके वह किसी अच्छे काम के लिए ठीक नहीं हो पाती, चंचलता हो जाता है और मुख्य रूप से साधन भजन करने के लिए इंद्रियों को स्थिर रहना पड़ता है। आप को स्थिर रहना, काम को, मन को, बुद्धि को, मंदिर में तो मन चल रहे देख रहे हैं भगवान को, लेकिन मन दूसरे जगह चल रहा है, इस तरह की चंचलता से हम कोई काम नहीं कर पाए। इस व्यवहारिक जगत में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे चंचल मन से, चंचल बुद्धि से, तो फिर भगवत नाम भगवत प्रेम प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। इसलिए योगी लोग एक अभ्यास के द्वारा अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अभ्यास करते हैं धीरे धीरे। भूख लगा है लेकिन आज नहीं खाना है क्योंकि आज के साथ शीत होता है, ऐसा नहीं कि आदमी को भूख नहीं लगती है, बल्कि सुबह याद आते ही यह सोच कर पहले भूख लग जाती है कि नहीं मिल रहा है, नहीं से लोग एक दिन पहले ही कुछ ज्यादा खाने की जरूरत पड़ते हैं रात को, तब देर से भूख लगे, एक चिंता हो जाती है। लेकिन डॉक्टरों को पता है कि आज कौन नहीं खाना है, और ज्यादा बात तो है कि बिल्कुल कुछ नहीं खाना है, निर्जला रहना है, तो बहुत बहुत निर्जला व्रत भी करते हैं, जल्दी नहीं करते। तो इस तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं जान बुझकर। तो जिस प्रकार अन्न से परहेज करते हैं, वैसे कुछ योगी अन्य विषयों से भी परहेज करते हैं, केवल एकादशी को नहीं, और भी विषय बहुत जीवन में पता नहीं कौन कौन जोनी ग्रहण किए, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा क्या क्या होंगे, बहुत भोग भोगे होंगे, इस बार नहीं भोगना है, अपना मन बना ले नहीं नहीं यह जीवन समग्र आयु हरिदेव समर्पण है, पूरा जीवन भगवान को समर्पण करना है, यह हम निश्चय करके निर्णय लेते हैं कि जीवन में हमारे अनेक जीवन में भोगना होगा, ऐसी बात नहीं है। इस जीवन में स्त्री संग्रह नहीं करना है, बहुत से ऐसे ब्रह्मचारी संन्यासी होते हैं जो जैसे काफी को ऑनलाइन करना है, वैसे इस जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित करना है, केवल कृष्ण अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सप्तति भजन करो, भगवान की बात ये शक्ति जीव के अंदर नहीं है, लेकिन जीव जो भगवान के लिए प्रयास करता है तो भगवान उसका हेल्प करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करता है प्रभु बहुत जीवन में भोगों के पीछे दौड़ा, कैसे कैसे लथाड़ा गया, अब आप कृपा करो सब कुछ छोड़कर आपका भजन करो, दे धने कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी, सारे भोगों को छोड़कर भगवान का ही भजन करे, इस मनुष्य जीवन की निर्णय के साथ अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्मचारी संन्यासी की इंद्रिया विषय अनुरूप नहीं हो पाएगी, लेकिन वो रुकता है नहीं नहीं, इसके लिए नहीं है, हमारा जीवन कृष्ण के लिए है, सब कुछ सुनाई देते हैं, कहीं भी बस में ट्रेन में रोड पर अनेक प्रकार के फिल्मी गाने, लेकिन भक्तों को समझ में ही नहीं आता, उधर ध्यान ही नहीं देते क्या गाया क्या कहा, भगवान को किसी में सुनना चाहते हैं, जानते हैं इंद्रियों का सीधा संबंध डायरेक्ट संबंध चित्त से है, जिसको प्रभुपाद कॉन्शियसनेस कहते हैं, अगर चित्त से इंद्रियों को कनेक्ट न किया जाए तो इंद्रिया विषयों को स्वीकार ही नहीं करेगी एकदम नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अभी कथा के अंदर है, हम कुछ बोल रहे हैं और आपका मन आपका चित्त कहीं दूसरे जगह का गया, बात करते करते लोग कहते हैं क्या कहें तो मुझे फिर से कहिए, अरे मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास काम है फिर से क्यों, फिर से इसलिए कि उन चित्त से काम का कनेक्शन कट गया था, मन से कुछ दूसरी बात सोचने लगे इसलिए सुना ही नहीं, और कभी कभी किसी रास्ते में पूछते हैं इधर से बहुत धोती पहुंचकर पता नहीं ध्यान नहीं दिया है, तो क्या घंटा करवाते कि वो ध्यान नहीं दिया, तो मन नहीं आपके साथ काम किया तो देखता भी नहीं है, काम से सुनता भी नहीं है, तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। एक बार महाराज विदेश से जनक जी से उनका मंत्री पूछ लिया, महाराज आप विदेह राज कहे जाते हैं, हमको बात समझ में नहीं आती क्यों, आप खाते भी हैं पीते भी हैं सुनते हैं देखते हैं बोलते हैं, देह का तो सारा व्यवहार उनके साथ चलता ही है, फिर विदेह कैसे है। मंत्री मैं इसका उत्तर इतना आसानी से नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम हमारे मंत्री हो तो एकदम योजना के अंतर्गत अपने न्यायपालिका से मिल करके उसको ये थे जबरदस्त केस में फंसवाए पहले, और उसके उनके जज को निर्णय किए कि मंत्री साहब को फांसी दी जाए, मंत्री को कुछ पता नहीं था कि राजा की शादी को होना और फांसी की सजा सुनाते गए तो महाराज कहने लगे कि मंत्री जी मैं तो इस न्याय पालिका से बाहर नहीं हूँ, इस जजमेंट से तो आपको होना ही पड़ेगा, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, आप बताइए मृत्यु के अतिरिक्त आपको क्या चाहिए। तो आप क्या चाहिए, क्या हम लेकर करेंगे, तो मर ही जाएंगे तो कुछ भी देख क्या करेंगे। तो कहते चलिए कोई बात नहीं, चप्पल हो गए ठाकुर जी का अमृत पिता का प्रसाद, इसको एक बार खाइए, जो भी आपके पिता का भोजन आपको दिया गया, आधा घंटा पहुँचे बाकी पर, बाकी पर जुड़ने से आधा घंटा पहुँचे। तो खा रहे थे तो ठीक है, अच्छा स्वादिष्ट खाना ठीक है, सब्जी ठीक है, सबको ठीक ठीक खाते गए। इसके बाद जब फांसी के लिए ले जाने लगे तब महाराज कहते हैं भाई एक बार मैं तो जीवन दान देता हूँ अपने अधिकार के अनुसार, मंत्री जी मेरे साथ बहुत सौहार्द किए तो एक बार मृत्यु दंड से मुक्त करता हूँ। तो योजना कांग्रेस से है सब लोग ठीक है महाराज, मंत्री जी अब आपको फांसी नहीं दी जाएगी, हमको जो किस बात के लिए आप प्रेम से खाए हैं, इसका भोजन इतना बढ़िया बनाया गया आप कुछ खाए हैं, अब चलिए साथ में खाते हैं। उनका थाली भी पड़ा हुआ था खाने के लिए, राजा साहब बैठे तब मंत्री कहते हैं अरे बहुत ही इतना तीखा है, इसमें बहुत ज्यादा नमक है। तो कह रहे तो बात में नहीं डाला गया है, आप जो थाली खाए हैं वही है, लेकिन आधा घंटा पहले तो आप सबको ठीक कर रहे थे, अब क्या हो गया। अरे महाराज मान लेता हूँ इसमें नमक पहले भी था, मिर्चा पहले भी था, लेकिन उस समय हमारे दीवार में मृत्यु नाच रही थी कि पकौड़ा पकड़ लिया था। जीव आधा घंटा पहले काम नहीं कर रहा था ना, तो जो पोजीशन आपका आधा घंटा पहले था वो मेरा जीवन बनाता है, इसलिए मैं विदेह हूं। विदेह देह का सिस्टम काम ही नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे मरना है, तो फिर इन विषयों में इतना स्वाद लेता ही नहीं। और जो लोग मृत्यु को भूल जाते हैं वो मजा लेते हैं, वो देही है पड़े हुए हैं संसार में, मैं विदेह यही होता है, ऐसा नहीं कि हाथ पैर है और मैं विदेह क्यों हो गया। तो और इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए सारी योजना की गई थी, राजा साहब क्लियर बता दिए और समझ में आ गया मैं कैसे विदेह हूँ। तो ये स्थिति बड़े बड़े विदेह लोगों का महाभागवतों का है। आप एक महात्मा एक ऋषि है, क्या नाम था, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा आयु है, लोमस ऋषि एक बार महाराज ऋषि के दरबार में आ गए, कोई सत्संग का चल रहा था, तो कोई महात्मा उनसे पूछ रहे कि आपका आश्रम कहाँ है हिमालय में, जो मरना है तो आश्रम बनाकर क्या करेंगे। और जानते हैं मनुष्य ऋषि कब मरते हैं, आपको सुनकर आश्चर्य हो जाएगा कि लोमस ऋषि की आयु कितनी लंबी है, दीर्घायु है। एक ब्रह्मा का जो शरीर पूरा होता है तो लोमस ऋषि के शरीर का एक रोम टूटता है, शरीर का एक रोम टूट जाता है, एक बाल झड़ता है, एक बाल टूट जाता है, और पूरे शरीर के एक एक रोम एक एक बाल जब पूरा पूरा झड़ जाएगा तब उनकी मृत्यु होती है। और ब्रह्मा की आयु कितनी है, हमारे टाइम से 43,20,000 वर्ष में 4 युग पूरा हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और इस तरह से 1,000 का जब चतुर्युगी बीतेगा 43,20,000 43,20 गुणा कर दीजिए 1,000 से, तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा। और उनका के लेयर को खाने को जाएगा और इसके बाद 100 वर्ष तक ब्रह्मा की आयु है उस उम्र से। और जब एक ब्रह्मा की मृत्यु होगी तो लोमा स्थिति के शरीर का एक ब्रह्मा छूट जाएगा। और वह इतने दीर्घायु होने का है क्या आश्रम बनाना है जो मरना है। हम लोग बर्फ पर कभी कभी जाते हैं तो अपना रुमाल एकदम छाप देते हैं कि हमारा सीट है। थोड़ा नीचे गए पानी होने के लिए तो कोई दूसरा बैठ न जाए इसके लिए। अगर कोई कदाचित बैठ न जाए आप कहते करते मेरा सीट है मैं अपना अधिकार रखा हूँ। अगर ट्रेन में सचिवों की रिजर्वेशन टिकट ले लिए तब तो बकौती हो गया। अगर कोई बेचारा इमरजेंसी में आकर बैठ जा रहे उठो हमारा सीट है भैया हमारा बेटी है बैठने दी बेटी ने तो मैं दीवार हूँ मैं इसको रिजर्व करा दो महीना पहले से। वाह आप लोग लो मस्त इसी से पूछ लीजिए ना। इस तरह लोगों की मानसिकता तो इंद्रियों का जो मन से है और इसके साथ चित्त से है और विषय को भोगते हैं इसलिए भोगते तो जानते हैं कि उन्हें मरना ही नहीं। बाकी सब लोग मर रहे हैं बहुत से लोग कार दुर्घटना में ट्रेन दुर्घटना में हॉस्पिटल में बीमार होकर मर रहे हैं वो मरते रहेंगे मुझे थोड़ा मरना है। महाराज जी निश्चित कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। उनसे प्रश्न किया गया है यक्ष ने कई प्रश्न पूछा है उसमें एक प्रश्न है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है तो कहते हैं कि अहम हमी भूतानी दशंती है जमालय शेषा इससे तुम्हें क्षति कुमार से मत लोग रोज रोज मर रहे हैं देख भी रहे हैं लोग मर रहे हैं अपने परिवार के रिश्तेदार के उस मृत्यु अंत्येष्टि में भाग भी लेते हैं लाश भी जलाते हैं सब कुछ देखते हैं रोज टीवी पर न्यूज पढ़ते हैं देखते हैं लेकिन यह मन में नहीं आता कि मुझे भी मरना है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मुझे भी मरना है ध्यान ही नहीं। तो इस तरह से लोग लापरवाह होकर विषय भोग करते रहते हैं और इससे उनका जीवन चला जाता है पूरा और एक दिन अचानक मर जाते हैं। भागवत में स्तुतियों में मुझको महाराज एक दो जगह श्लोक आया है कि व्यक्ति महाराज जो सुन पाते हैं कि यह प्रभु यह जीव विषय भोग में इतना लापरवाह है लेकिन काल के रूप में आप इतने सावधान हैं कि जैसे चूहा अपने बीज से निकाल करके दूसरे अनाज को खेतों में किसानों के खलिहान में आप देखते होंगे देखे होंगे कहा के लोग तो कम देखे हैं धान के बाल गेहूं के बाल को काट करके ले जाकर अपने बीज में एकदम गोदाम में रखता है और इतना व्यस्त रहता है बिजी लाइफ होता है कि वो निकलता है उधर से लाना उधर से माल धोकर गोदाम में लाना है इधर से और वहीं उसको खाने के लिए साफ अपना कुंडली बांध करके बीच के किनारे बैठ जाता है और बेचारा वो जस्ट लाइफ जीवन जीवी जीवन वाला सर्प अपने जीव से निकलकर सर्प के पीठ पर कूद कर भागते हुए जब दौड़ता है उसको खुश होता है देखने का कि यहाँ काल है लेकिन सब एकदम सावधान है जो ही मुंह के रेंज में आएगा फोन के पास से ही दबोच लेता है पकड़ लेता है और अब चाहे चूं कुछ करने में दम नहीं अब तो पकड़ लिया। उसी प्रकार ये प्रभु हम लोग अपने पूरे जीवन के उद्देश्यों के लिस्ट में क्या हमारे कार्य सूची है आपको नहीं रखा पूरा जीवन दूसरे कामों में व्यस्त रहे लेकिन आप काल के रूप में पूर्ण सावधान है और पकड़ कर लेते हैं जीव को तो उसको जाना ही है सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। तो उसी प्रकार व्यक्ति लापरवाह है उस चूहे की तरह एकदम हवड़ा कलकत्ता से लेकर काश्मीर तक सब चलाना है दो दो सिर्फ उम्र का ही काम करना है पता नहीं क्यों किसके लिए कुछ विचार समझते हैं हम अमर हैं बहुत दिनों तक भोग भोगेंगे एक दो मकान कारण से काम नहीं चलता, सभी बड़े बड़े स्थानों में कोचिंग होना चाहिए, विदेश में होना चाहिए, इस तरह लोगों की मानसिकता है। और कभी कभी एक तो चलो जनरल जीवन है, जनरल लोगों का, कभी कभी साधकों के साथ भी यह स्थिति आती है कि वे अपने इंद्रियों पर भरोसा करते हैं कि अरे मैं मेरे साथ ऐसा थोड़े हो सकता है, मैं जब चाहूँ तब कंट्रोल करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंद्रियों से विषयों के संयोग से योगी को बचाना ही चाहिए, प्रयास पूर्वक बचाना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं छोड़ना चाहिए, नियंत्रित रखना चाहिए। नियंत्रण में रखने वाले योगी साधक सुखी रहता है और विश्वास करने वाला व्यक्ति बहुत काम कर रहा है। साधारण लोगों की बात तो छोड़िए, हम लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ इस तरह की स्थिति को भगवान शिव भागवत में कथा है। वो सर्वसमर्थ ईश्वर है, भगवान है, उनके शिव शब्द के साथ भगवान शब्द जोड़ने में ज्यादा आनंद की बात है, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है एकदम सर्वसमर्थ ईश्वर पूर्ण कंट्रोलर, लेकिन वो भगवान शिव भगवान के मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर पाए। जब भगवान मोहिनी रूप धारण करके अश्रुओं को मोहित किए और अमृत देवताओं को पिलाए, उसके लिए भगवान को एक इमरजेंसी रूप धारण करना पड़ा अश्रुओं को मोहित करने के लिए, तो देवता लोग निराश हो गए थे। भगवान का प्राण था स्वरूप मंथन, बेचारे देवता हो बहु आज्ञा पालन किए, परिश्रम किए, अमृत अश्रु लेकर भागे, देवता हटा, भगवान अभी सामने खड़ा है, और क्या होगा तो चिंता मत करो, कुछ तो उपाय होगा ही। तो भगवान जिधर वे अमृत लेकर भाग रहे थे, उधर ही भगवान मोहिनी इतना सुंदर रूप धारण किए, विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी एकदम वीडियो बना दिए, कैसे मोहिनी अब फूल को खेलते हुए अपने आंचल को लहराते हुए हवा में चल रही है, और असुर लोग देख कर चकित भूल गए कि हाथ में अमृत है, नहीं तो एक से दूसरा छीनता जा रहा था, जो बलवान था उससे छीन लेता, हम पूर्वज मैं ज्यादा परिश्रम किया हूँ, मैं पीऊंगा, तुम तो ऐसे आलसी खड़ा था, परिश्रम तो मैं किया हूँ। और वहां का रूप दूसरा फिर तक मोहिनी पर दृष्टि गई, कहेंगे पागल बेकार इस घड़े के अमृत के चक्कर में पड़े हो, वो दिमाग अमृत तो सामने आ रही है, एकदम चकित हो गए और जाकर देवी तुम किसकी हो, देखने में तो ऐसा लगता है कि तुमको देवता भी टच नहीं किया, मनुष्यों की बात क्या है। तो एकदम मोहिनी को अनुभव हो गए, इसके लिए भगवान रूप धारण किए और कलश एकदम हाथ में दे दिए। भगवान भगवत गीता में ऐसे थोड़े झूठ बोलते हैं कि कर्म अधिकार से मां फलेषु कदाचन, कहते हैं केवल कर्म का अधिकार है फल का नहीं। तो कर्म करके देवता असुर अमृत निकाले और सोचे कि इस कर्म का भोक्ता मैं हूं, लेकिन भगवान ने लिए अपना ऐसा ठीक किए कि एकदम अपने आप दे दिए। आप लोग कश्यप जी के गोत्र में जन्म लेने वाले इतने बड़े कुल के मुझको रास्ता चलने वाले पुरुष वेश्या पर आप कैसे विश्वास कर लिए, आप मेरा परिचय पूछ रहे तो जान जाइए, मुझको कोई ट्रेनिंग नहीं कैसे सर्विस करना है, कैसे अमृत बांटना है, मैं नहीं जानती। और रास्ते में चलने वाली एक पुरुषनी पर आप विश्वास कर रहे हैं, ये आपकी शोभा देता है, तो वो कहीं नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम जो भी करोगी वो अच्छा करोगी। एक टीकाकार लिखते हैं कि असुरों के मन में था कि इस बहाने से कुछ देर हमारे साथ न होगी तुमको देखने को मिलेगा, तुमसे बात करने का अवसर मिला, दूसरा कौन बहाना ढूंढेगा, वही देखकर तो बात भी कर रहे हैं, यह अवसर छीन जाएगा आपसे, इसलिए अमृत दे दिए। और भगवान अमृत दे करके कहते अच्छा देखिए हम ट्रेनिंग नहीं लिए हैं सर्विस करने का, अगर मुझसे कुछ ऊंच नीच हो तो अरे जो करोगे वही अच्छा है, पूरा आप लेंगे, तो अगर बीच में आपको कुछ बोलिएगा मत, पहले मैं कर देती हूँ, नहीं नहीं आप वो अनुचित कर ही नहीं सकती, दे दिए तो कहे ठीक है आप लोग अलग पंक्ति लगा दीजिए जिससे पहचान में आ जाए कि आपका गुरु किधर है और देवताओं का भी अलग, इसके बाद उन लोगों के तो देखते भी और खिलाना चालू की देवता हो चुका। और महाराज श्री कहते हैं कि देख देख कर आश्वासन दे रहे थे वही कि आप चिंता मत करो, ऊपर ऊपर का जो पानी भाग है ना पंचोचा भाग तो इन लोगों को खिला लो, दान माल तो आपके पास लेकर आ ही है ना। अब तो धीरे धीरे पिलाते हुए वो तो धरा एकदम समाप्ति को जाने लगा तो दूसरे असुर कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं चुप बेचारी पहले का स्थिति है और तुम लोग बीच में इस तरह की बात करने लगे। स्त्री से विवाद करना ऐसे उचित नहीं है, इसमें प्रतिष्ठा जाएगी और इसका दोष क्या है तुमने मन दिया है जे लोग तो पहले कही है मैं जो भी करूंगी आपको सहना पड़ेगा। बेचारे अपने बात में फंस कर एकदम चुप पिला दिए हमारे देवराओं को, एक राहु को बर्दाश्त नहीं हुआ, सूर्य दर्शन के बीच में आया ये लोग इंगित किए कि प्रभु ये तो असुर है, फिर भगवान उसका सिर काट दिया अपने स्वरूप में प्रभु। तब देवताओं को उस असुरों को होश हुआ, अरे ये तो मोहिनी विष्णु है, बहुत भारी धोखा हो गया, लेकिन यह नील संपूर्ण ब्रह्मांड में फर्स्ट प्रिंट पर आया कि भगवान ऐसा रूप धारण किया, तो भगवान शिव को भी पता चल गया। तो भगवान शिव वहां समुद्र मंथन में नहीं थे, एक बार उनकी जरूरत पड़ी हराम पीने के लिए तो आए पीकर चले गए जगत रक्षा के लिए। तो भगवान एक बार आकर के शिव जी भगवान के सामने कहे कि प्रभु जब जब आप अवतार लिए हैं तब तब मैं आपके रूप का स्वागत किया हूँ, ये मोहिनी जो अकस्मात रूप धारण की उसको मैं नहीं देखा, मेरी बहुत इच्छा है उस रूप को देखने। तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि शिव जी रूप आप के लिए ये असुरों को मोहित करने के लिए धारण किया गया, ये आराध्य रूप नहीं है, इसका दर्शन मत कीजिए, अच्छा यही होगा। तो भगवान शिव कहते हैं प्रभु आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कहते नहीं इंद्रियों को एकदम चंचल बनाने वाला रूप है आप हो या कोई हो, और यह रूप समाधि का विषय नहीं है, चिंतन का विषय नहीं है, इसलिए आप जैसे साधक के लिए है ही नहीं, ये तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए इमरजेंसी में रूप धारण किया गया था, इसको देखने के फिर छोड़ दीजिए श्री जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, प्रभु आप अपना मानते हैं मुझको, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मुझको ये रूप दिखाइए ही। तो भगवान ने चलो दिखाते ना कभी, शिव जी नहीं जानते थे कि आज ये दिखाएंगे, कहे कभी दिखा दूंगा जब आपका इतना जिद है तो दिखा दूंगा। और शिव जी चल रहे हैं अपने पत्नी पार्वती के साथ, गणों के साथ, मंदिश्वर है और भी कई परिकर है, कुछ आगे बढ़े तो देखते एक बागीचे में एक ज्योति गेंद खेल रही है और ऐसी चल रही है, शिव जी को देखते रह गए। शिव जी जैसे महान योगी कामदेव को भी जला देने वाला एक बार भगवान के रूप से प्रभावित हो गया, ऐसा विचित्र ढंग से प्रभावित हुए कि मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, बस संकेत करता हूँ कि पकड़ने के लिए आलिंगन के लिए दौड़ पड़े, केयर भी नहीं किए कि पार्वती देख रही है। किसी भी एक पत्नी के लिए यह बहुत असह्य विषय है कि उससे छूट कर भी कठिन है, सामने किसी ज्योति के साथ पति चला जाए तो उसको क्या बीतेगा, लेकिन इसका होश नहीं है शिव जी को, चले गए मोहिनी को पकड़ने के लिए और अंततः पीछे से उसका जूड़ा पकड़ ही लिए, आलिंगन करना चाहने उनका अमोघ तेज दीर्घ गिरने लगा और इधर भागने लगे भगवान सभी ऋषियों के आश्रम में एक ही टका लिखते हैं कि शिव जी दिखाना चाहते थे देख लो कामुकता का रोग, देख लो बड़े बड़े जोगी ऋषि सब देख रहे हैं और शिव जी कैसे दौड़ रहे हैं, मोहिनी कैसे भाग रहे हैं, जहां जहां उनका अमोघ दीर्घ गिरा वो रत्न बन गया, बाद में शिव जी को होश हुआ, कहते हैं प्रभु मैं समझ गया, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी अवज्ञा की आपकी बात नहीं माना, अपनी इच्छा व्यक्त किया। तो शिव विरंचि को मोहनी को है बपुरा आन अस्त जान भजे मुनि माया पति भगवान, तो भगवान की माया बहुत प्रबल है, विषयों के रूप में जीव के चित्त में आती है, वह किसी भी रूप में दर्शन के रूप में भजन करो, आत्म तत्व को समझो। इस देह में अहंकार को, मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये सब चक्कर छोड़ो। बस शुद्ध जीव कृष्ण का अंश है, उनका दास है, उनकी सेवा करो। जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य का। तो इस प्रकार जो महान योगी है वो अपने आप को संभाल लेता है। उनको भी खाने में टेस्ट आता था, लेकिन कुछ भी खा लेते थे। पकड़ कर भद्रकाली के पास बलि देने के लिए ले गए। वो देह धर्म से बिल्कुल ऊपर थे, जानते थे कि लोग क्या करेंगे, मेरा सिर काटेंगे। काटने से पहले स्नान कराए, कपड़ा पहनाए, तिलक भी लगाए, माला पहनाए, सब स्वीकार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो देवी जी का प्रसाद, मालपुआ, खीर जो भी दिए उसको भी खाए। चलो देवी के साथ तलवार निकाल के काटने जा रहे, खड़ा हो गए। उनको पता है कि बिना काल के कोई मर नहीं सकता, और बिना भगवान की इच्छा से पता भी नहीं सकता। अगर प्रभु का यही विधान इसी तरह बनता है तो फिर अपना योजना क्या बनाता है? पर भी जा सकते हैं एकदम प्रस्तुत। देवी तलवार निकाल कर दसवीं सरदार मारना चाहते हो, देवी मूर्ति तोड़ कर निकल पड़ी और खींच कर तलवार पकड़ कर सबको काटने लगी। और दादा श्री भरत से आप फिर जाते हैं लोगों के पीछे, क्या करे हो? उनको मुक्त कर दिया, आप जाइए। और सबको इतना काटी उनके अपने पैरों से, उनके सिर का फुटबॉल खेलने लगी है, इतना क्रोध में आ गए। एक वैष्णव का इतना अपमान। प्रभुपाद कहते हैं इसके पीछे के श्लोक में कि वह देवी आज भी कुरुक्षेत्र में किसी प्रसिद्ध नाम के साथ पूजित है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार सेवा के लिए करता है और विषयों से अपने को बचाता है प्रयास पूर्वक। कछुआ भय की स्थिति जब देखता है तो सिमट देता है। हमको भी भय है इन विषयों से। ऐसा नहीं कि हम अनुभव करके तब जानेंगे कि इसमें दुख है। ये तो बहुत डर मायने चीज है, एकदम बहुत कमजोर बुद्धि वालों का चीज है। जब आग में उंगली लगा देंगे और जल जाएगा तब जानेंगे कि जलाती है। पहले उसके आज का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जब हम इलेक्शन लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, इसके बाद जानेंगे कि वो दुखद अवस्था है, उसमें टेंशन है। उससे अच्छा है किसी विधायक यूपी मिनिस्टर से पूछ लो, ठीक ठाक हो तो बता देगा, बता देगा। परिश्रम करके इलेक्शन जीता लेकिन टेंशन बना है कि मंत्री नहीं बना। अगर मंत्री बन गया तो अभी टेंशन है कि चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, नहीं क्लियर है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो भी केंद्र में मिनिस्टर नहीं बना, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, जो टेंशन लगा हुआ है तो उस होल में दौड़ कर अनुभव करने की क्या बात है, उसको मूर्खता है ना, समझ जाना चाहिए। उसी प्रकार सारे विषयों के साथ यही है, किसी विषय में सुख नहीं है। अगर आप चाहें कि भोजन स्वादिष्ट है और एकदम सुख की चरम सीमा है, एक सीमा के बाद वो स्वादिष्ट भोजन पेट में जाकर अनिष्ट करने लगेगा, अपच हो जाएगा। इसी प्रकार सारे इंद्रियों के साथ है। जिन विषयों को आप ज्यादा भोजन के चक्कर में करेंगे वो आप कष्ट देंगे और धीरे धीरे भगवान से आप विमुख हो जाएंगे। हमारा शरीर, हमारा मन, इंद्रिय सब कृष्ण के लिए है, भगवान ऋषिक केस है और इंद्रियों को ऋषिक कहते हैं और इसका उपयोग है उनकी सेवा में। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधीश भगवान की सेवा होनी चाहिए, इसलिए इसका उपयोग है। इसलिए बुद्धिमत्ता के साथ विचार पूर्वक इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। इसको भक्ति जोड़ना, भक्ति जोड़ जिसका शरीर है जिसके लिए है उसमें लगा है। तो या स्थित क्या व्यक्ति का कर्तव्य है वही स्वभाव में स्थित करता है, अपने मन से अपने बुद्धि से सब कुछ भगवान के लिए करता है। विचार पूर्वक हर एक चीज को देख कर विचार करता है। विजय प्रभु का उदाहरण देते हैं कि एक रोड पर दिया हुआ नोट या कोई जालक देख कर व्यक्ति तीन तरह के मान व्यक्ति आ रहा है, एक योगी, एक भोगी और एक त्यागी। तो त्यागी उस नोट को देखता है कोई पता पेड़ का या नोट कोई अंतर भगवान का तो एक नंबर का मोट है, सब कुछ त्याग कर चला गया। एक भोगी देखा उसको उठाया तो प्लानिंग कर रहा है कि इसको क्या क्या इससे करेंगे, इतना पैसा से हम ये करेंगे खाएंगे हम पिएंगे करेंगे जो क्या बनाता है भोग। योगी जब देखता है तो सोचते हैं कि भोग किसका है, इस नोट का संबंध किसके साथ किसका है उसके साथ जोड़ता है देता है उस मालिक को खोजता है जिसका पैसा है। तो इस प्रकार इस संसार में बहुत सी चीज है देख कर किसी का स्मरण करना चाहिए। केले के अंदर केला तो हम खाते छीका निकाल के खाने लगते हैं, लोग काम करते थे कि केला खाते समय विचार करो इतना पैकेट के अंदर हलवा किसने रखा है, और इतना सुंदर हलवा बनाकर इसके अंदर रखा उस बनाने वाला को कम से कम स्मरण करो। इस भाव में लोग यहाँ तक कह दिए कि अगर शराब पीने में स्वाद मिल रहा है तो एक घूट के बाद याद करो कि शराब किसके द्वारा किसने बनाया और किस तत्वों से बना है। तो इस तरह अगर याद करोगे तो कृष्ण तक पहुंचना पड़ेगा, तो धरती कृष्ण का है उसमें भूमि आप सब उनका है और उसी धरती से पेड़ निकला होगा निकला जो भी उससे शराब बना तो वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। याद करो कि इसमें टेस्ट किसने भरा है, यदि उसको टेस्ट नहीं है फिर भी जिनको टेस्ट मिलता हो उनको दूध पीते समय उनका स्मरण करो, पानी पीते समय, क्योंकि भगवान भगवद्गीता को कहते हैं कि जल के अंदर जो टेस्ट है वो मैं हूँ, स्वाद जो है वो मैं हूँ। भगवान का संयोग हो रहा है जीव के साथ, एक गुलाब का फूल देकर कृष्ण का याद कर सकते हैं, क्या सुंदर इसमें रंग भरे हैं चेत भरे हैं तो भगवान की अद्भुत सृष्टि है। तो इस तरह हर एक वस्तु को देख कर हम अपना चित्त कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं। यह है इंद्रियों का भगवान के साथ ठीक ढंग से उपयोग, जिस चीज सुनने को मिला कृष्ण का स्मरण, खाने को मिला तो, और कोई बड़े लता मंगेशकर के स्वर में कोई गा रहा है खूब सुंदर स्वर में कोई भजन सुनने को मिला तो वाह धन्यवाद भगवान आप ऐसा स्वर बनाए, खूब स्वर उनकी रचना है इतना सुंदर आवाज कीर्तन सुनकर सब अपने इंद्रियों का संयोग भगवान के साथ। तो गाने में बोलने में सब में इंद्रियों का संयोग करना चाहिए। यह नहीं कि हम बहुत अच्छा गाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसा स्वर है उसी को कायेन वाचा मन से इंद्रियवा सर्वात्मना जन कायेन वाचा मन से इंद्रियवा बुद्धात्मना मानुषित स्वभाव करोत जल जल सकलम परस्मै नारायण समर्पय सब। भगवान के लिए समर्पण इस श्लोक की व्याख्या तो मैं बहुत बार कई बार तीन तीन घंटा किया हूँ, तो उसमें एक वाचा शब्द पर मुझको याद आ गया। जैसी वाणी है आपका मोटा है अच्छा स्वर है या वाचा का जो भाषा जानते हैं बंगला हिंदी भोजपुरी संस्कृत उड़िया जो भी उसी से भगवान की सेवा कीजिए, उसी वाणी से कीर्तन कीजिए। ऐसा नहीं कि जब आप खूब बढ़िया लता मंगेशकर के स्वर में गाएंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। इस विषय में महाभारत का एक उदाहरण बाबा बरसाना रमेश बाबा के बातों से दो बार सुना हो तो एक उदाहरण देते हैं कि एक बार भीमसेन के मन में शौक जगी कि हम भी संगीत सीखें। क्योंकि अर्जुन रणभूमि में भी कामवाई पाते थे और संगीत गोष्ठी में भी गाते भी अच्छा थे, बजाते भी अच्छा थे, तो सब लोग उनकी प्रशंसा करते और खासकर भगवान मैंने बाहर जो तो धर्मों को खेल कर देता है। तो भीमसेन को एक चीज थी कि हम भी गाना सीखें, तो अपने संगीतज्ञों को बुलाकर अपना वाद्य बजाना सीखना चालू किए, लेकिन रिसेप्शन में ही सबको डिस्टर्ब हो रहा तो कोई बोल नहीं पाता। अर्जुन बोलते तो डांट देते, तुम सीख लिए तो काफी बन रहे हो। हमारा जो भीष्म इतने शील स्वभाव के बोल ही नहीं पाए, नकुल सहदेव का हिम्मत नहीं, तो द्रौपदी से महाराज भीष्म कहे कि किसी तरह मुझको यहाँ से हटाओ ना। तो द्रौपदी कहे कि देखिए संगीत एक साधना है, आप प्रति फेस से क्यों अभ्यास करते हैं, अपना एकांत में पहाड़ के किनारे अभ्यास कीजिए, वहाँ फ्री रहेगा, स्वर भी ऊंचा रहेगा, अच्छा है। तो वहाँ भीषण अभ्यास कर रहे थे, एक दिन एक धोबी का जना भूल गया, वो खोलते हुए पहाड़ पर ढूंढ रहा था, जो बहुत आवाज सुना तो नीचे उतरा, तो भीमसेन कहते हैं तू कैसे आ गए हैं, तो प्रभु आने के कारण बताने में उठा ही लगता है। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन रमेश बाबा की बात कर रहा है, नाम रख कर बार बार मुझ पर मत दोष दीजिए, पता नहीं कहाँ है। ऐसा मत पूछ दीजिएगा किस प्रसंग में है। एक बात रमेश बाबा का है, दो बार सुना। तो इस तरह से जो इंद्रियों का क्षमता है, जो बोलने की करने की, उसको कृष्ण की सेवा में ऐसे नहीं किया जा सकता। और यह है अच्छा उपयोग, और जहाँ गलत विषयों की तरफ जा रहा है वहां से रोकना चाहिए शौक के साथ, नहीं तो प्रकृति तो इतनी रोग नहीं देगी, बूढ़े हो जाएंगे, असमर्थ हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, इसी जीवन में इंद्रिय भोग के लायक नहीं रहेगा। तो उस लाचारी में क्यों रोकेंगे, शौक से स्थान के साथ रोके एक योग की तरह। तो इसमें गौरव है और भगवान की भक्ति है। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री एक बार बिहार में प्रश्नोत्तर महाराज क्लास की 45 मिनट और प्रश्नोत्तर चला 1.5 घंटा। तो प्रश्नोत्तर करते करते गांव में कथा कर रहे थे, पहाड़ी क्षेत्र था, एक बूढ़ा खड़ा है राम। तो महाराज हाँ बाबा बोलिए, इनको भाई को कॉन्टेस्ट उनको दिया गया। तो वो पूछे कि महाराज जी मुझे खेत पर जाना है, उधर जंगल में सुअर हरिण सब आ जाते हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ कि एक कब खत्म होगा। बस आपको प्रश्न के साथ ही खत्म। और कब आएंगे तो इनके हाथ में, दोबारा कब आएंगे तो जगन्नाथ जी। जब आप लोग विशेष कृपा करेंगे, भगवान चाहेंगे तो जरूर आएंगे।